الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على نبي الأنبياء نبي إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غصبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن قالت على التنور رواه الترمذي لا يحل لامرأة إن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه رواه صحيح ابن حبان صدق الله العلي العظيم. میرے دوستو پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں, گزشتہ ہفتے والدین کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کے بارے میں بات ہو رہی تھی. مسلمانوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا للناس حسنا, تم جب لوگوں سے بات کرو تو اچھی طرح بات کرو. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, سورة الاسراء میں اللہ فرماتے ہیں ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو. حدیث پاک میں ہے اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, جب تم زمین والوں پر رحم کرو گے آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ایک حدیث میں ہے جب دو مسلمان ملے تو مسکراتے چہرے سے ملے. ایک حدیث میں ہے جب دو مسلمان آپس میں مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ مسلمان ملتے ہیں آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے جو پہلے سلام کرتا ہے. مومن بھائی سے محبت کا اظہار کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا, اچھی طریقے سے بات کرنا, چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہونا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو تعلیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پکارتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے تھے لبیک لبیک. اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے استاد ہیں, ان کے مرشد ہیں, نبی ہے, مگر صحابہ کرام میں سے جب کوئی پکارتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے تھے لبیک. جیسے کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو لبیک پڑھتا ہے. ایک مرتبہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, عجیب بات, انت خونا و مولانا, آپ ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہہ رہے ہیں آپ میرے بھائی ہیں اور میرے پکے دوست ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے بندے کی کتنی رسپیکٹ, دوسرے بندے کو کتنی عزت اور رسپیکٹ دیا کرتے تھے. حدیث پاک نے فرمایا تبسکم فی وجہ اخیک لک صدقہ, تمہارے چہرے پر دوسرے مسلمان سے ملتے وقت مسکراہٹ ہو تو تمہیں صدقہ کرنے کا سلام مل جائے گا. آدمی صدقہ کرے اور ادھر سے مسکرا کے سلامی کر لے. بعض روایت میں ہے وَأْمُرْكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدْقَةً. کوئی اچھی بات بتا دی بری بات سے روک دیا یہ بھی صدقہ ہے. بلکہ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ صَدَقَةً. کوئی آدمی کو راستے کا پتہ نہیں ہے, بھائی یہ فلاں کا گھر کدھر ہے, ایڈریس کدھر ہے, فلاں کہاں رہتا ہے, آپ نے ان کو بتلا دیا, یہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَبَصْرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّدِيِّ الْبَصْرِ لَكَ صَدْقَة. جس بندے کی آنکھوں کی بینائی ٹھیک نہیں ہے, اگر تم اس کو راستہ پکڑ کر ذرا صحیح راستہ بتا دو یا اس کو بچا لو گاڑی سے یا کسی کراؤڈ سے یا کسی سے, یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے, صدقے کا ثواب ہے. وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَزْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدْقَةٌ. میں راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہو, بڑا پتھر پڑا ہوا ہو یا کوئی ہڈی ہو اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی چلے گا اس کو لگ جائے گی, یا کوئی کیلی پڑی ہوئی ہو, نیل ہو, آپ نے اس کو اٹھا کر کے ڈال دیا, واللہ یہ بھی صدقے کا ثواب ہے. بلکہ ایمان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اماتۃ الاذی عن الطریق. ایمان کے 70 سے 72 80 برانچز ہے, اس میں لوس ہے اماتۃ الاذی عن الطریق. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے شروع شروع میں 2008 میں 2009 میں بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا, وہ گرین اسکول گرین لینے سے ادھر, تو راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہوتی تھی. آپ یقین جانیے میں اس کو اٹھا کر کے اللہ سے کہتا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا لے, اللہ مجھ پر پھلا تکلیف ہے تو ہٹا لے, نیکسٹ ڈے تمہارا کام ہو جاتا تھا. اتنا اللہ کے نبی کے فرمان میں کتنی برکت ہے, کتنی برکت ہے. ہمارے اکابرین کہتے ہیں جب تم دعا کر وضو کرو اور دعا کرتے ہیں نا, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے گھر کو وسیع بنا, وبارک لی فی رزقی. آپ اس کو دعا پڑھتے پڑھتے اپنا سوچے اللہ آج مجھے میرے گھر میں یہ کام ہے, آج مجھے یہ کام ہے, اللہ اس وضو اور دعا کی برکت سے میرا کام کر دے, اپنا کام ہو جائے. چونکہ سنت پر آپ نے عمل کیا ہے تو سنت میں ہزاروں فائدے ہیں. کوئی بھی سنت پر عمل کر کے اللہ سے کہے اللہ میں نے تیرا یہ کام تیرے نبی کا بتلایا ہوا ہوں تیرا ہی ہے, میں نے یہ کیا اللہ میرا فنا کام کر دے. کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں آپ سوچ کر, اس لیے کہ سنت آدمی ادا تو کر لیتا, میں مسجد سے نکل گیا چلو یہ مسجد سے نکلا اور بستر پر سونے کے لیے چلا گیا, اللہ بسم کا مت ہوا سو گیا, دعا پڑھ لیتا میں نے سنت دعا پڑھ. اصل یہ نہیں ہے, اصل دماغ میں سوچے کہ میرے نبی نے سوتے وقت یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا, میں دعا پڑھ کے سوتا ہوں. اس کو کہتے ہیں استحضار, کنسنٹریشن, ڈیووشن. میں سوچتا ہوں میرے نبی کے طریقے کو پھر کرتا ہوں تو یہ آدمی ولی بن جائے گا. ہر سنت کو کنسنٹریشن ڈیووشن کے ساتھ پریکٹس کرے نا تو یہ آدمی وقت کا ولی بنے گا. میں مسجد سے نکلتا ہوں, میرے نبی کا فرمان ہے کہ مسجد سے نکلو تو اس طرح دعا پڑھنا, تیرے نبی کا فرمان. میں اپنے گرینڈ سن کو بوسا دیتا ہوں, سوچ لوں ایک سیکنڈ کے لیے کہ میرے نبی نے اپنے نواسے کو بوسا دیا, سنت میں بھی بوسا دیتا ہوں. آپ کو ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے, یعنی بوسا تو دینا ہی دینا ہے, لیکن 100 شہید کا ثواب مل گیا, 100 مارٹرز ریوارڈ. ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیکم بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید, 100 شہید مارٹر, اس کو 100 شہید کا ثواب. اصل میں آدمی اپنے نبی کا سوچ کر کرے, میری بات سننا ہے نا. تو یہ ہم کرتے تو ہیں, راستے سے تکلیف دینے میں ہٹا ڈال دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالی نبی کا فرمان اس کو ہٹا دو, میرا اپنا کام. آپ دیکھیے آپ کی بہت ساری مشکلات حل ہو جاتی ہے. میں کبھی کہا کرتا ہوں جب دعا پڑھتا ہوں وضو کرتے ہوئے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. بعض محدثین فرماتے ہیں گھر کو وسیع فرما, بعض محدثین کہتے ہیں ظاہری اعتبار سے گھر اللہ بڑا عطا فرما, اور بعض محدثین کہتے ہیں اے اللہ میرے دل کو وسیع فرما. یہاں
वसेनी पिदारी से मतलब क्या है, दिल है, हार्ट है। अल्लाह गिव मी द लाइट एंड नूर इन माय हार्ट, दिल में नूर अता फरमा। ये तरीका है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करने का। इसीलिए रिवायत में है वो इफ़रागू का मिन दलवी का फी दलविन अखी का लका सदका, अगर तुमने किसी को एक गिलास पानी पिला दिया सदके का सवाब है। हदीस में आता है कयामत के दिन जहन्नमी लोग लाइन में खड़े होंगे, इसको जहन्नम में जाना, इसको जहन्नम में जाना, इसको जहन्नम में जाना, सबको खड़े हिसाब देने के लिए। और पता है कि बस मुझे तो जहन्नम में जाना है, और इधर से एक लाइन जा रही है जन्नत की तरफ, ऐसे जा रहे जन्नत में जा रहे जन्नत में जा रहे। उसने बुलाया, भाई 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 इधर आओ ना, इधर आओ इधर आओ, तुम मुझे पहचानते हो? कहा नहीं। कहा मैंने फुला वक्त में तुम्हें एक गिलास पानी पिलाया था या एक जग पानी दिया था वुजू करने के लिए, मेरी भी सिफारिश कर दो। वो बंदा अल्लाह से सिफारिश करेगा, अल्लाह इसको जन्नत में भेज दे, अल्लाह कहेगा जा तू भी जा इसको भी ले जा, एक गिलास उसकी सिफारिश हो जाए। इसीलिए मैं कहा करता हूं हज के मौके पर, मैं अपने साथियों को कहा, आप लोग हज में आए हो, असल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा हज क्या है, मल हज या रसूल अल्लाह, तो क्या फरमा, इतआम उत्तआम वक्षु सलाम, खाना खिलाओ। मैंने कहा खिदमत करो, तुम्हें खाना खरीद कर लाके देना नहीं है, बल्कि जो बूढ़े हाजी लोग हैं उनको वहां लाइन में खड़ा होना मुश्किल है मीना में अरफात में, उनके लिए जाओ और उनके लिए लाओ, लेकर उनको दे दो, वो खाना खाएगा तुमको पूरे हज का सवाब मिल जाएगा। ये हज है, हज में खिदमत है। मैंने कहा नमाज पढ़ोगे सवाब मिलेगा, रोजा रखोगे सवाब मिलेगा, इबादतों से सवाब मिलता है और खिदमत से खुदा मिलता है। खिदमत से क्या मिलता है, खुदा मिलता है, बहुत बड़ी बात है। एक बादशाह यूं कह रहे कि भाई ये सब कुछ ले जाओ जिसको जो चाहे, तो हर आदमी एक एक चीज ले गया, और एक आदमी कहे नहीं मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना तुम चाहिए, फर्क है ना। बादशाही हाथ में आ गया तो सब मेरे हाथ में आ गया, वहां तो एक चीज मिली, यहां तो अल्लाह ही राजी हो गया, खिदमत से खुदा मिलता है। इसलिए तमाम चीजों को सामने रखकर सोचिए नबी अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं। ये तमाम हदीस बयान करके व्हाट ही वांट फ्रॉम अस, व्हाई ही मेंशन सो मेनी सदका, ये करो सदका, ये करो सदका, ये करो सवाब, ये करो, छोटी छोटी चीज है, सवाब सवाब सवाब। व्हाई ही वांट दैट मुस्लिम, दूसरे मुसलमान के साथ मोहब्बत प्यार का नरमी का मामला करे। यही तो मस्जिद में जमात के साथ नमाज क्यों रखी है, ताकि लोग मिले एक दूसरे से, मोहब्बत बढ़े, सलाम हो, इसीलिए तो जमात का सवाब है। उसके बाद फिर जुमा का सवाब है, उसके बाद फिर ईद का सवाब है, ताकि एक दूसरे से मुलाकात हो, एक दूसरे का चेहरा देखे। वरना कितने लोग ऐसे हैं महीनों तक नजर नहीं आते हैं, वो तो कभी कभी नजर आ जाते हैं, जैसे भाई बाल भाई, इनसे मोहब्बत है। अच्छा तो क्या कह रहा था मैं, ये है अब आगे चलते हैं। मैंने वादा किया था कि हम बाप मियां बीवी का, अब माँ बाप का सुना दिया, मुसलमानों को आपस में सुना दिया, अब चलते हैं बीवी का मामला। मियां बीवी को भी आपस में सुलूक प्यार मोहब्बत से रहने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, हस्बैंड अंडरस्टैंड वाइफ, वाइफ अंडरस्टैंड हस्बैंड, बीवी को चाहिए कि शोहर के दिल को खुश करने की कोशिश करें, शोहर के दिल को खुश करने की कोशिश करें, शोहर को चाहिए कि बीवी के दिल को खुश करने की कोशिश करें। इसीलिए खाविन की इताअत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमिनर रिफ्क बिज़्ज़ौजी अन तुतीअहु अज़्ज़ौजतु फी गैर मासियतिल्लाहि अज़्ज़ वजल फला तत्तरफ अलैहि। क्या कह रहे हैं, अगर अल्लाह की नाफरमानी नहीं, अगर अल्लाह की नाफरमानी नहीं हो रही तो बीवी को चाहिए कि खाविन की बात को माने और खाविन के ऊपर किसी और को तरजीह न दे। आई बात सुन, खाविन की बात माने, शरीयत ने दर्जा रखा है। बहुत सारे लोगों से हमें ऐसी जिंदगी गुजर जाती, देखो क्या कहते हैं, बीवी कहती मेरी बात चलेगी, शोहर कहता मेरी चलेगी, मेरी मेरी में झगड़ा होता है। अल्लाह के नबी क्या कह रहे, फला तत्तरफ अलैहि, बीवी को चाहिए कि खाविन के ऊपर दूसरे को बरतरी नजर लाए। किसी को मैं आलिमा हूं, मैं अकलमंद हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं, मेरी बात चलेगी, ये गलत है। मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे इमाम अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरकत अल्लाह पाक ने खाविन की बात में रखी है, अगर वो शरीयत के खिलाफ हुक्म न करे तो। शरीयत के खिलाफ अगर शोहर बीवी को करने का न कहे, शरीयत के मुताबिक है, तो फिर उसकी बात में बरकत है। याद रखो, दुनिया के मामलात में जो बात खाविन, दुनिया के मामलात में जो बात हस्बैंड कह दे, अगर बीवी उसको कबूल कर लेगी तो अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत देंगे, उसकी जिंदगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान देगी, वक़द हत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निसा अला ता लिअज़वाजिहिन्न लिअन्न ज़ालिका सबब दुखूल जन्नति वन नजाति अनिन्नार। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तरगीब दी कि वो अपने खाविन की इताअत करें, इसलिए बीवियां खाविंदों की जब फरमा बरदारी करती है तो उनको अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे और जहन्नम से बचा देंगे। इससे बढ़कर क्या है? उस दिन मैंने आपको कहा था कि जन्नत के हर दरवाजा फ्रॉम द मैन ओनली एंड सोली अबू बकर रजी अल्लाह ताला, और दरवाजा विल कॉल हिम कम और कोई मर्द नहीं। लेकिन औरतों में सारी औरतें जो मैंने बयान किया था, पांच वक्त की नमाज पढ़े, रमजान का रोजा रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें और शौहर की इताअत करें, हर दरवाजा उसको बुलाएगा, इधर से आ, इधर से आ, इधर से। औरतों में सब कितना आसान है, इट्स सो इजी फॉर द लेडीज टू प्रैक्टिस। हत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जन्नत चाहती है मेरी माएं और बहनें, इस पर अमल कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, अलैहि खेल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलम्मा फरगत मिन हाजतिहा, बस जो काम था वो पूरा हो गया, जब काल लहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रही थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ात ज़ौजिन अंत, क्या तुम्हारा शोहर है? आर यू मैरिड? कालत नाम, शी सेड यस आई एम मैरिड। फकाल कई बांत लहू, तुम उसके साथ कैसी हो? हाउ डू यू लिव विथ हर विथ हिम, यानी लुक आफ्टरिंग हिम और नॉट। कालत मा आलू इल्ला मा अजस्तु अनु, मैं कोशिश करती हूं तो लुक आफ्टर हिम, लेकिन जहां मैं होपलेस हो जाऊं, आजीज हो जाऊं, वहां मैं नहीं करती। कॉल उन जुरी आई न अंत मिन फिन नू जन्नत के बना। देखो क्या कहा अल्लाह के बेहकी की रिवायत है, जरा गौर तो करो, तू उसके साथ कैसी है? इसलिए कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जन्नत भी है। इताअत करोगी जन्नत, इताअत नहीं करोगी जहन्नम। इसलिए हदीस पाक में आता है, जो औरत फजाइल पर अमल करती है और इस हालत में इसकी मौत आए, द वुमन हु प्रैक्टिस ऑल द फराइज एंड कंपल्सरी एक्ट एंड देन शी डाइज व्हाइल हस्बैंड इज प्लीजिंग विद हर, हस्बैंड इज हैप्पी विद हर, अल्लाह उसके लिए सारे दरवाजे खोल देता है, शौहर राजी है। जब मौत हो रही है ना उस औरत की, उसका शौहर उससे बहुत राजी है, नाराज नहीं है। अगर नाराज है और उसकी मौत आ गई औरत की, तो जहन्नम के दरवाजे खुले। ये तो मेन पॉइंट है। दुनिया की जिंदगी तो 40 इयर्स 50 इयर्स 80 इयर्स है, अखर तो असल तो मरने के बाद की जिंदगी है। स्ट्रेट अवे यू कैन गो इन जन्नत। थोड़ा सा कड़वी बात तो होती है, लेकिन अल्लाह के नबी का फरमान है अल-मुर्रु हक, क्या कह रहे हैं, हक बात जरा कड़वी लगती है। हमेशा याद रखो, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अन तसुरु इदा रआ, अल्लाह के नबी का अल्फाज है, खाविन जब देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए, बीवी को देखे तो उसकी आंखें क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। इसका मतलब क्या है, हर वक्त बीवी को देखकर शोहर खुश रहे, इसका मतलब साफ सुथरी भी है, साफ सुथरा भी है, फरमाबरदारी की सिफत भी हो। जब नाफरमानी हो तो चाहे कितना मर्जी कोई खूबसूरत बन के आ जाए, शोहर नाराज है, चाहे कितना ही मेक और अप लगा के आ जाए, मेक और अप समझेंगे, कितना ही मेक और अप लगा दे, मेकअप लगा दे, लेकिन तबीयत उसकी शोहर की खत्म हो गई है, खुश नहीं किया शोहर को, तो फरमाया तो ऐसी सूरत में खाविन का दिल खुश नहीं है तो क्या होगा, तुम ऐसी बनकर रहो कि तुम्हारे शोहर तुम्हें देखकर क्या हो, खुश हो। वह अमीन हो, आगे फरमाया अल्लाह का दिल, वह अमीन हो अंत थी अहू इजा अमरहा व तलत तब लहू कौलन व अमरा, और उसकी तात और फरमा बरदारी करे, कौल में भी फेल में भी नरमी के साथ मामला करे, नरमी सॉफ्टनेस अल्लाह कितनी पसंद फरमाते हैं, जरा गौर तो कीजिए, कुरान मजीद का पूरा कुरान पढ़ो, सेंट्रल वर्ड क्या है पूरे कुरान में, सेंट्रल वर्ड क्या है, वो क्या है, वल यतलतफ, 15 में पढ़े मैंने, ये सेंट्रल वर्ड है, इधर 15 पर अल्फाज के एतबार से, इधर 15 पर अल्फाज के एतबार से, बीच में जो सेंट्रल वर्ड है वो सूरतुल कहफ में है, बड़े अल्फाज से लिखा है वल यतलतफ, वल उसका क्या मतलब है, लुत्फ सॉफ्ट नरमी, नरमी सॉफ्ट, ये वल यतलतफ लतफ इसका क्या माना है, नरमी। शरीयत ने एक नुक्ता हमें बयान फरमाया, तुम भी नरमी का मामला करो, अब वहां इंसान नरमी से महरूम हो तो फिर वो आखिरत में कितना महरूम होगा। कुरान भी लफ्ज लाते हैं बीच में, और कोई लफ्ज नहीं लाए, यही लफ्ज लाए नरमी का, अल्लाह वमीन हो अंतुरक भी औलाद हो अहसन तरबिया, और दूसरा एक तो शौहर को खुश करना, शौहर का दिल खुश करना, दूसरे नंबर में मेरे नबी फरमा रहे हैं औलाद की अच्छी तरबियत करना, चिल्ड्रन को ब्रिंग अप करना है कैसे, इस्लामी वाइज, और नंबर 3 पर फरमाया वह पजा माल, शौहर के माल की हिफाजत करना, ये 3 चीजें हैं, और नंबर 4 शौहर के सामने जोर से न बोलना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता, उसका शरीक हदीस है, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदा करें जब भी आए, ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लेकिन सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, सजदा किसके लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए है, अंदाजा कीजिए क्या देख है, सजदा जिसके सामने अपना मर्दा झुका दिया, अल्लाह अकबर, कितनी जबरदस्त बात बयान फरमाई। तो खाविन के तकाजों को पूरा करने के बारे में जो मैंने अभी रिवायतें बयान की है, और आगे बयान फरमाया हर वक्त नुक्ता चीनी न करे, हर वक्त हर बात में शौहर के साथ ये गलत नुक्ता चीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने औरतों को कसरत के साथ जहन्नम में देखा, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ वुमन इन जहन्नम, लॉट्स ऑफ वुमन, इज हदीस बुखारी शरीफ, सही हदीस ऑफ बुखारी शरीफ, हदीस नंबर 304, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ वुमन इन जहन्नम, लेकिन शोहर भी वैसा होना चाहिए, आगे शोहर का ही बयान करो, हमारे शोहर आजकल के कैसे होते हैं, किस तरह ट्रीट करते हैं, एक बात सुन लो शोहर के लिए, कयामत के दिन, कयामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का सॉलिसिटर नहीं बनेंगे, सिर्फ दो आदमी के सॉलिसिटर बनेंगे, वकील बनेंगे, वकील अल्लाह के सामने। जज में जितना बड़ा वकील हो, केस इतना जल्दी जीत जाता है ना, सुनना ही बात, वकील जितना अच्छा हो, एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस वाला हो, जल्दी केस जीत जाता है। और कयामत में इमामुल अंबिया से बढ़कर वकील कौन हो सकता है? फरमाया मैं दो आदमी का वकील बनूंगा, यतीम के माल खाने वाला, यतीम का माल खाने वाला, उसका मैं वकील बनूंगा अल्लाह के सामने कि अल्लाह इसको अजाब दे, मैं केस लड़ूंगा। दूसरा बीवी को अच्छी तरह ट्रीट न करने वाला, मारने वाला, गालियां देने वाला, बुराई करने वाला, बीवी अच्छी है माशाल्लाह, लुक आफ्टर, फिर भी हर बात में टोकता रहता है, गुस्से होता रहता है, मारता है। कल परसों मुझे बताया, मुझे रोजाना मारता है सुबह शाम, रोजाना मारता है सुबह शाम। हम खुद क्यों नहीं कर लेते कुछ काम? एक साहबी है कॉलेज, बाद में साहबी बने, लेकिन पहचानते नहीं थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये अल्लाह के नबी, सुना था तो अपना नाम रख लेते थे मुबारक। क्या नाम होते? मुबारक। ए मुबारक पर्सन इज यस, बरकत वाला, नाम नहीं आता था उनको। तो अल्लाह के नबी वहां से गुजरे तो वो रो रहा था, पूछा क्या हुआ भाई? फरमाया मेरा मालिक, मैं बहुत बुखार, मुझे बहुत बुखार है, मैं बीमार हूं, मैं बहुत बीमार हूं, बहुत बीमार हूं, और मेरा मालिक सुबह आएगा या शाम में आएगा, वो देखेगा मुझे ये काम पूरा करना है, चक्की चलाना फुला, मैं नहीं पूरा कर सकता, मैं बहुत बीमार हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ठीक है मैं आता हूं भाई, तेरी खिदमत करता हूं, चले गए। तो इसने सोचा है बहुत सारे मुझे ऐसा कहकर चले गए, मैं आता हूं कोई नहीं आया, ये आदमी नहीं खबर कौन है, लगता है चेहरे से बहुत खूबसूरत, बहुत सीरत सरत सब। अल्लाह के नबी आए, उसके लिए पानी लाए, खजूर लाए, कहा ये खा, और उसके बाद कहा जा आराम कर। क्या कहा? जा आराम कर, सो जा। देखो ये सुनना मेरे लिए आसान है, बोलना मेरे लिए आसान है, अल्लाह के नबी है आराम कर। कहा मैं आराम करूंगा तो काम कौन पूरा करेगा? वो मुझे आएगा मारेगा, वो सुबह शाम मुझे मारता है, सुबह शाम मुझे मारता है, कुछ नहीं तू आराम कर, कभी करेगा कौन? कब मैं करूंगा। उसको सुलाया बीमार को और खुद काम किया अल्लाह के नबी साहब। ये बाज मरतबा ऐसा थोड़ा है कि हर वक्त ही बॉस बने रहे। अल्लाह के नबी शासन घर में आते थे, कितने अच्छी, बहुत सारे कुछ काम कर लेते थे, कुछ ना कुछ घर में काम जरूरी करना चाहिए। सुबह से गया काम पर, शाम में आया देखा कुछ इधर उधर कर, फौरन मारना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू। अल्लाह के नबी उसका वकील बनेंगे, उस औरत का वकील बनेंगे, और ये खतरनाक अजाब उसको होगा जब अल्लाह के नबी वकील बने, याद रखो। हाँ, औरतों को भी कहा कि मैंने जहन्नम में बहुत सारी औरतों को देखा, बहुत सारी औरतों को, जब मैं रात में गए तो बुखारी के अंदर है, पूछा साहबिया ने पूछा अल्लाह के रसूल क्यों, व्हाई डिड यू सी लॉट्स ऑफ वुमन इन जहन्नम? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुकसिर नल लाना व तकफुर नल अशीरा। फरमाया दो काम की वजह से, बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, एक तो ज्यादा लानत करती है, ऐब निकालती है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, दिस नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट, हर चीज पर ठीक, क्या कहते हैं, लानत करती रहती, बहुत ज्यादा, कभी बच्चों पर लानत कर दी, तुझे ऐसा हो जाए, तू ऐसा है, तू ऐसा है, गालियां कभी किया और कभी किया, बहुत ज्यादा। और शौहर के एहसानात को रिजेक्ट करती है, तूने मुझे क्या दिया, तूने मुझे क्या दिया, शादी होने के 20 साल हो गए, क्या दिया तूने मुझे, कुछ नहीं दिया, तो कैसे 20 साल गुजारे, कैसे तूने 20 साल गुजारे, खाती रही, पीती रही, सोती रही, मकान है, सब कुछ है, सब कुछ है, कपड़े है, और क्या चाहिए। अगर खाविन सारी उम्र अच्छा रखे, किसी मौके पर थोड़ा सा कोताही हो जाए तो कहेगी मैंने तेरे घर में आके अच्छा देखा ही नहीं, तुम तो बच्चों के लिए करते हो, मेरे लिए थोड़े करते, क्या कहते बाज मतबा, क्या कहते हैं, बच्चों के लिए करते हो, मेरे लिए क्या किया तुमने, वो चुरी भूमि। तो ये जो एहसान फरामोशी है, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। मेरी माए और बहने, हमेशा इससे अपने आप को बचाओ। और आगे अब चलते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खाविन अपनी बीवी के साथ, खाविन अपनी बीवी के साथ नरमी का मामला करें। क्यों? कुरान करीम में अल्लाह औरतों की तरफ से वकील बन रहे हैं, अल्लाह औरतों की तरफ से सिफारिश कर रहे हैं, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, वाशिरुहुन्ना, अल्लाह कह रहे हैं ए मर्दो तुम अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह खुद कह रहे हैं क्योंकि औरतें कमजोर होती है, उनके साथ अच्छा सलूक करो। अब यहां तो बाजी मर्द है, ये तो जुमा में होना चाहिए ताकि सारे मर्दों को पता चले, फिर भी इंशाल्लाह हमारा बयान तो ये मिक्सर पर सब जगह पहुंचता रहता है, बल्कि पहुंचाना चाहिए आप सब लोगों को हमारा बयान, जितना पहुंचाओगे जितने लोग अमल करेंगे आपको इतना सवाब मिलेगा। अल्लाह जजाए खैर दे हमारे इकबाल भाई और इस तरह शबाब को और उनकी फैमिलियों को, उनके बच्चों को जो मेरा ये काम करते रहते हैं बरसों से, मेरे इस प्रोग्राम को जो तफसीर सले है ये प्रोग्राम है माशाल्लाह पहुंचाते रहते हैं, सारी दुनिया से लोगों के फोन आते हैं, लोग बयान सुनते हैं, कभी इंडिया से, कभी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कभी कभी अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से, साउथ अफ्रीका से फोन आते हैं। आप मैंने देखो मेरा अरफात का बयान है लोगों ने पूरी दुनिया में सुना है, कहां कहां से मुझ पर फोन आए, जबकि मैंने ये बयान भेजा इनके बेटे पर तैयब पर और उन्होंने रख दिया तो बस कहां से कहां पहुंच गया, यूट्यूब पर रखा तो लोगों ने कहां से कहां सुना और कहा वो अजीब बात बयान फरमाई आपने अरफात में, हम दुआ में भी शरीक हो गए, हम कहां दुआ करें लोग कहां हाथ उठा रहे, इसमें सवाब मिलेगा। मेरी माए और बहने हर बूथ के दिन आते रहो और लोगों को दावत दो, जितने तुम्हारी दावत पर आएगी बात सुनेगी जिंदगी बदलेगी, कयामत में आपके लिए जखीरा ही जखीरा है, अल्लाह इतना सवाब अता फरमाएंगे जिसका अंदाजा नहीं होता है। मेरा बयान सिर्फ औरतों ही के लिए नहीं होता है, मेरा बयान जनरल होता है, औरतों के लिए भी होता है, मर्दों के लिए होता है, अल्लाह के नबी की अक्सर बातें सभी के लिए हुआ करती थी। यहाँ देखिए क्या कहा, इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हदीस नंबर 2671, इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, अल्लाह कह रहे हैं ए शोहरों ए मर्दों अपनी औरतों के साथ भलाई का मामला करो, अच्छाई का मामला करो, खैर का मामला करो। शरीयत ने कहा, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, कुल्लु मा यलहू बी अर्रजुल वल मुस्लिमु बातिलुन इल्ला रमयहु बिकौसिही व तादिबहु फरसहु व मलाअबतहु अहलहु फइन्नहुन मिनल हक्क रवाहु तिर्मिज़ी, हर वो काम जो बेकार हो, लहु लाभ हो, खेल कूद हो, हर वो जिसमें इंसान इस्लाम से दूर हो रहा मना है, लेकिन तीन काम है करने का हुक्म है, तीन काम अल्लाह के नबी ने करने का हुक्म बताया। एक तो पहले कैसे बो एंड एरोस, किस तरह एरोस चलाना है, तीर कमान से निकालना कैसे है वो सीखो, आजकल कैसे इस तरीके से चला सकते हैं, शूटिंग प्रॉपरली कर सकते हैं, इसको सीखना। और नंबर दो पर सवारी के घोड़ों को तरबियत देना, सवारी के जो घोड़े हैं ना उस पर बैठकर उसको क्या है तरबियत दो कि ये घोड़े तुमको अल्लाह के रास्ते में ले जाएंगे, अल्लाह के नबी ने कुछ। और नंबर तीन पर फरमाया अपने घर वाले के साथ नरमी का मामला करना, तीन चीजें अल्लाह के नबी ने फरमाया, समझ में आई बात। ये मतलब नहीं कि बस कोने में मस्जिद में बैठ गए और बीवी का कदा नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला को अगर चाहते तो सबको जाओ जंगल में जाके इबादत करो, लेकिन क्या कहा मस्जिद में भी करो, घर में भी नफल सुन्नत पढ़ा करो, घर में भी जाओ। इसलिए हमें चाहिए कि अपने घरों में मोहब्बत प्यार वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस में है, अयुत्इमहा मिम्मा यत्अम वयुल्बिसहा मिम्मा यल्बस, जो खुद खाए अपनी बीवी को खिलाए, जो खुद पहने अपने बीवी को भी कपड़े पहना है, ऐसा नहीं कि कुर्ता ही पहना दे, यानी मैं कहता हूं जैसे अपने लिए खरीदे बीवी के लिए भी खरीदे, अपने लिए खाना है तो बीवी का भी खाना होना चाहिए। तो लुकमा खिलाने में दिलों के अंदर क्या होती है मोहब्बत पैदा होती है। और कभी इसको हदिया दे, मैं कहा करता हूं सबसे बड़ी तावीज औरतों के लिए क्या है, मर्दों के लिए औरतों के सबसे बड़ी तावीज क्या है कि अगर कोई हदिया लाए अपनी बीवी को दे, बीवी को हदिया दे तो बीवी खुश हो जाएगी और खाना भी अच्छा मिलेगा, मोहब्बत बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया तहादु त तहाबू, तुम एक दूसरे को हदिया दो तो तहाबू मोहब्बत बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी ताबीज तो यही है, हम तो कभी बीवी को खर्चा ही नहीं देते, बीवी थोड़ी चीज पर राजी हो जाती है। मैंने पहले भी एक वाक्य सुनाया था, एक औरत ने अपने शौहर को घर से निकाल दिया, जैसे होता है यहां 3W सुना है ना, वर्क वाइफ एंड वेदर, इधर खतरे वाली चीज, डेंजरस चीज है, निकाल दिया। बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं, भाई मुझे तो बीवी ने निकाल दिया, मैं तो कहां रहता हूं, फुना के यहां, कभी यहां कभी यहां कभी यहां, एक दो किलोमीटर अंदर जा। मैंने कहा तूने मारा होगा, मैंने कुछ नहीं किया, शाउट किया। मैंने शाउट भी क्यों किया तूने, इस कंट्री में शाउट भी नहीं किया जाता, नरमी का मामला कर दे। तो अजीब बात, निकाल तो दिया। अब ये बहुत क्लेवर था बल भाई, तुम्हारा जैसा होगा, बहुत क्लेवर, सीधा चला गया किधर, सोने की दुकान पर, दाऊद भाई की दुकान पर, सोने की दुकान, और जमील की दुकान पर चला गया, और वहां कहा जमील भाई को, ये मेरा नंबर है बीवी का, इसको फोन करो और पूछे कि मेरा तुम पूछे क्या हुआ। कहा तुम्हारे शोहर ने मुझे नंबर दिया है तुमसे बात करने का, कि तुम्हें तो कहा अगर वो पूछे कि मैं कहा हूं तो कहना मैं बाथरूम में हूं, ऐसा नहीं कि मैं सुन रहा, वो सुन रहा है, वो बातचीत हो रही है, मैं यहां, ऐसा नहीं मैं बाथरूम में गया। तो कहा फोन किया, हेलो सो कौन है भाई बोलो। कहा मैं फोन कर रहा हूं, फुला आदमी हूं। कहा तुमने क्यों फोन किया। कहा तुम्हारे शोहर ने नंबर दिया, तुम्हारे वो किधर है वो, और गुस्से हो गई, एक तो घर से निकाला था और ऊपर से दूसरे को नंबर दे रहा है फोन, और गुस्से हो गई बहुत ज्यादा। कहा नहीं नहीं गुस्से न हो, उसने मुझे कहा कि मेरी बीवी को फोन करके पूछो उसको कौन से कलर का पर्स चाहिए, कौन से कलर का सोना चाहिए, जो कहे वो दे देना, व्हाटएवर द डिजाइन वन, इफ शी वन जस्ट गिव इट टू हर। अच्छा देखो पूरा मूड बदल गया। वो किधर है, और मेरी डार्लिंग किधर है। कहा वो तो बाथरूम में है। कहा आवे तो उनको को मुझे फोन करे, और उनको को जल्दी घर पर आ जाओ। देखा है ना, मूड चेंज हो जाता है। ये अल्लाह के नबी का फरमान है, तहादू तहाबू। हम लोग तो देना नहीं चाहते, बहुत सारी औरतें शिकायत करते हैं, घर में खर्चा नहीं करता और दूसरों को बेचता है। कयामत के दिन तराजू में, कयामत के दिन तराजू में सबसे ज्यादा पहले कौन सा मुल्क चुना जाएगा बताओ। वट एवर यू स्पेंड फॉर योर वाइफ एंड फॉर द चिल्ड्रन, जो खर्चा तुमने बीवी बच्चों के लिए किया, फर्स्ट थिंग्स अल्लाह इज गोइंग टू पुट इन द पाम ऑफ द स्केल ऑन द डे ऑफ कयामत। अब वो भाइयों को फुला को देता है, पहले घर में तो देता नहीं, बच्चे बड़े हो गए उसकी शादी नहीं करता, कभी घर में खर्चा न दे, तो फिर जाहिर बात है कि रात दिन खिदमत करने वाली तुम्हारी बीवी, कभी तो वो भी तो इंसान है, उसको भी तो गुस्सा आएगा ना। इसलिए मर्दों को भी चाहिए कि ठीक करे अपनी बीवी को अच्छी तरह, बीवी को दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो ही घर चलेगा। गाड़ी में अगर आप बाइसिकल चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, और आगे का बिल ठीक है, पीछे वाले में हवा नहीं है, तो क्या होगा, जा सकोगे, मंजिल पर पहुंच सकोगे। दोनों बिल ठीक होने चाहिए, शोहर भी बीवी भी, तब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। बात सुन आ रही है। तो एक मरतबा एक नौजवान था मेरे पास आया, और वो अभी नया नया नेकी के रास्ते पर आया हुआ था, जैसे अभी इंडिया में चल रहा है वो मोहम्मद अली का, यूपी में बहुत चल रहा है बेचारा। स्कूल के जमाने में मुसलमान होटल, बात से बात याद आ गई, मोहम्मद अली की, उसका नाम था, वो हिंदू था, और स्कूल के अंदर में कॉलेज में ही एक्सेप्ट कर इस्लाम, इसने इस्लाम को पढ़ा, अब मुसलमान बन गया। अब इसकी इतनी लंबी दाढ़ी है, टोपी है, माशाल्लाह, और लोगों को दावत दे रहा है इस्लाम की तरफ, और उसका बाप हिंदू है, उसकी मां हिंदू है, बाप मिलियनर्स है, बाप के हिंदू बाप है, मिलियनर्स है, 50 मिलियन का मालिक है, बहुत है उसके पास, दुकानें हैं, बिल्डिंगें हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। मां ने कहा अगर तू दूसरे मजहब में जाएगा मैं जहर पी लूंगी। समझ में बात आ रही है। इसने कहा मैं इस्लाम नहीं बदलूंगा, कुछ भी हो जाए, जैसे जाबी का वाकिया। मां बाहर बैठी रही धूप में, न खाना न पीना, तो लोगों ने आकर कहा तेरी मां खाना भी नहीं खाती, पानी भी नहीं पीती है, तू मुसलमान छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे, आ जा वापस। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं इस्लाम छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि इस्लाम एक बार चला गया उनके दिल में, इसके दिल में चला गया, अब पूरे यूपी में बल्कि मीडिया पर एक मशहूर हो गया कि इसने फैमिली लड़की जिस लड़की से शादी की वो मुसलमान थी, उसका नाम भी अच्छा था चांदनी, उसके साथ शादी कर ली, चांद के साथ मून के साथ शादी हो गई। अब ऐसा मशहूर हो गया कि इन लड़की वालों ने शोहर के पैसों की वजह से इसको दबोच कर जबरदस्ती मुसलमान किया है और बेचारे उसकी बीवी को उसके माँ बाप को जेल में डाल दी, कोई छुराव नहीं। अभी कुछ दिन से हो रहा है और वो बेचारा बाप बाप का कह रहा है मुझे मेरे बाप का माल नहीं चाहिए, मैंने अपनी खुशी से शादी की है और मैं खुशी से मुसलमान हुआ हूं, इसलिए कि मुझे मैं तो कभी मंदिर में जाता नहीं था, मुझे इस्लाम में चलने से जो मजा आता था आता है वो कहीं नहीं आ रहा है। और वो खुद कह रहा है कि मुसलमानों को देखकर मुसलमान न बनना, इस्लाम को पढ़कर मुसलमान बनना, इसलिए कि इस्लाम में बहुत ठंडक है, बहुत सुकून है, वो बहुत बात मीडिया पर कह रहा है, लेकिन ये लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये सूरत है दुनिया में। तो ये नया नया मुसलमान आम जिंदगी थी, आकर कहने लगा ये जो मेरी बीवी है उसने मुझे जलील कर दिया। अब इसने अपनी बीवी को ही कह दिया, पूछा खैर तो है, कहने लगा न नमाज पढ़ती, मैं तो अभी नया मुसलमान हुआ हूं और ये तो नमाज भी नहीं पढ़ती, न पर्दा करती है, न दीन की बात सुनती है, न किसी प्रोग्राम में जाती है, मैं जब से दीन की लाइन पर आया हूं ये मेरे साथ बिल्कुल अपोजिट है, मैं किधर नेकी की तरफ, आई एम न्यू मुस्लिम, आई एम फॉलोइंग द इस्लाम प्रॉपरली, शी इज अ मुस्लिम बट शी नॉट फॉलोइंग इस्लाम। देखा होता है ऐसा और उनके दिल पर असर होता है, फिर बाद वाले कैसे मुसलमान बनेंगे। इसलिए इस्लाम पेश करने के लिए हमें पहले इस्लाम पर चलना होगा, घर की औरत इस्लाम पर न चले तो न्यू मुसलमान के ऊपर क्या असर होगा। हां असल में वो मुझसे कहवाना चाहता था कि तुम उसके साथ जरा सख्ती करो, किसके कस के रखो, वो नीयत दिल में लेकर आया था। जब हजरत साहब जब उस्ताद ने इजाजत दे दी तो बस मैं निमत लूंगा, आई वांट बी वेरी हार्ड माय वाइफ, लेकिन वो बिल्कुल सुन्नत पर अमल नहीं करती है, लेकिन मैंने सुन्नत पर अमल किया। मैंने कहा एक सुन्नत है, वो क्या सुन्नत है, बीवी के लिए मिठाई लेकर जाओ। क्या कहा, बीवी के लिए मिठाई लेकर जाओ, जब दस्तरखान पर खाने बैठो तो एक टुकड़ा मिठाई का उठाकर उसके मुंह में डाल देना, यह अल्लाह के नबी का फरमान है, एक रुकमा तुम मुंह के बीवी में डालो, देखो वो मेरा मुंह देख रहा है, मैं उसको खिलाऊं, मुसलमान तो उसको पता कभी किया नहीं था, लेकिन सुन्नत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सो कहा मैं फारसी तो नहीं बोल रहा हूं, समझता है कि नहीं समझता, कहा मैं समझ रहा हूं, अब समझ गया, मिठाई लेके जाऊंगा। और उसमें से गया और खाने के लिए बैठे तो वो लाया डब्बा और उसमें से खोला और बीवी के मुंह में डाल दिया और वो चुप हो गया, लेकिन लगता था कि उसका दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि वो तो अंदर में तो गुस्से से था ना कि इसलिए कि इस्लाम पर नहीं चल रही है, बात नहीं सुन रही है, वो तो झूठे मारने के चक्कर में था, एक मौका मिले कि इसको मैं झूठे मारूं, लेकिन हमने उसको झूठे की जगह क्या है मिठाई का टुकड़ा चला गया। अगले दिन जब वो आया तो हमारे पास कहने लगा आंखों में आंसू, रो रहा था, क्या हुआ, लगा मेरी गलती यही थी, कहा मिठाई का डब्बा लेकर गया और मैंने उसको कहा आपके लिए लाया हूं, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जब हम बैठ गए पहले तो कहा मिठाई लेकर आया हूं, खुश हो गई, जब हम बैठ गए वो खाने लगी तो मैंने मिठाई उसके मुंह में डाली तो वो मुझे देखने लगी, कहने लगी क्या कर रहे हो, मैंने कहा मुझे आलिम ने बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, कहने लगी सुन्नत है, मैंने कहा हाँ। वो लुकमा खाने के बाद काफी देर तक वो सोचती रही, पूछने लगी क्या मैं भी सुन्नतों पर अमल करती हूं, देखा एक सुन्नत की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, मीठा खिलाने से देखा नेक बनने की अल्लाह पाक ने उस औरत को तौफीक अता फरमाई, ये जहर नहीं खिलाया ये मीठा खिलाया, ये झूठे मारना ये जहर है लेकिन मीठा काम करने ये क्या है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए कि जब बीवी मियां बीवी बैठ कर मुस्कुराते हैं तो अल्लाह भी उस पर मुस्कुराते हैं। अल्लाह ने अमल की तौफीक अता फरमाए और घर के काम वगैरह बहुत सारी चीजें हैं इंशाल्लाह। अब उसके बाद औलाद के बारे में, औलाद की तरबियत का मसला है, हो गया माँ बाप के बारे में, मुसलमानों को आपस में क्या सुलूक, बीवी का शोहर के साथ, शोहर का बीवी के साथ, आगे औलाद की तरबियत पर कुछ बात करेंगे जो बहुत जरूरी इश्यूज है आजकल। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। या रहमान रहीम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, يا ديان يا سلطان يا قديم الإحسان، اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم سبك مغفر فرما، اللهم سبك جمع هنا قبول فرما، اللهم سبك جمع هنا قبول فرما، أبن نبي پاک صلى الله عليه وسلم کی مبارک باتوں سے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، ہمیں سنت پر دھیان کے ساتھ، سنت پر عمل کرنے کی استحضار کے ساتھ، کنسٹیٹیشن کے ساتھ سنتوں پر چلنے والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ آج کے زمانے میں جو سنت پر عمل کرتا ہے وہ سب سے بڑا ولی ہے، اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والوں میں سے بنا، گناہوں سے بچا لے، غیبتوں سے بچا لے، لام تان سے بچا لے، شوہر کی نافرمانی سے بچا لے، آپس میں محبت مودت عطا فرما، شوہر کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو شوہر کے ساتھ محبت اور انڈرسٹینڈنگ نصیب فرما، ایک دوسرے کو شریعت کے مطابق ٹریٹ کرنے کے توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما، بار بار پر تان و تشنی کو ختم فرما، اللہ العالمین آپس میں غصہ ہونے کو ختم فرما، اللہ روزی میں برکت عطا فرما، دل میں وسعت نصیب فرما، دل میں وسعت نصیب فرما، دلوں میں نرمی نصیب فرما، دلوں میں نرمی نصیب فرما، زبان پر نرمی نصیب فرما، آپس میں مسکراہٹ نصیب فرما، ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کو اے اللہ، امت کو اے اللہ ہدایت کی طرف لا دے، امت کو ہدایت کی طرف لے آ، اللہ صراط مستقیم پر چلا دے، بگڑنے سے پھسلنے سے امت کی حفاظت فرما، آپس میں ٹکڑے ہونے سے مسلمانوں کو بچا لے، علماء میں، عوام میں، خواص میں، اے اللہ آپس میں اے اللہ طور ہونے سے بچا لے، جور نصیب فرما، جور نصیب فرما، ایک دوسرے کی سمجھ نصیب فرما، علماء کو علماء کی، عوام کو علماء کی، علماء کو خواص کی، اللہ آپس میں اے اللہ محبت مبدت کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین قیامت کی پریشانیوں سے بچا لینا، قیامت کے اللہ عذاب سے بچا لینا، قیامت کی غصے سے، تیرے غضب سے بچا لینا، اے اللہ بے حساب جنت میں داخل کر دینا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے ہم سب کا آنا یہاں بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک بندیوں میں شامل فرما۔ الہ العالمین ہمارا بیٹھنا، اٹھنا اور جانا آنا، قدم قدم کو اے اللہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنا، عفو عافیت رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنا، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔